ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਵੱਖ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੈਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਕੀ 3 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਲੋਚਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਪੱਟ ਹਨ, 15 ਭਗਤ ਹਨ, 11 ਪੱਟ ਹਨ, 4 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਥਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੋਜੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਸਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਰ ਦੋ ਨੇਸਤਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਹਸਤਮ ਕਿ ਹਵਾ ਮਜ਼ਬ ਅਜ਼ਮਨ ਹਸਤਮ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ उस वेले दे फकीर पीर या मुफ्ती ने पूछा सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक गल गुरु गोबिंद सिंह जी दसो भी मजहब तुम्हारा खूब कि हमारा खूब बस ये है न्यारापन साडा भी मजहब तुम्हारा खूब कि हमारा खूब ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोले तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब ये है न्यारापन तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब जिस वेले संसार उते धर्मां उते ये बात आ जाएगी उस वेले सिख दा न्यारापन तां दुनिया में दिसेगा अखबारां कालियां हो गई हूँ भी कालियां हो रही हैं एक ऐसे मसले उते हिंदुस्तान अंदर कि एक अयोध्या है उते एक मंदिर है एक मस्जिद है अते देखते देखते सारा हिंदुस्तान उसकी लपेट च आ गया है क्योंकि कोई ये नहीं सहार सकता कि मंदिर से मस्जिद भी इकट्ठे हो सकते हैं पर जिन्होंने जरा भी साढ़े इतिहास का पता है वो जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस स्थान ते आपका प्रकाश होया है उसका नाम है कूचा फारूक खान उस गली का नाम है कूचा फारूक खान अते जिथे हरिमंदर साहिब है उस दे नाल वेड़े विच ही बनी हुई मस्जिद है अते जिस पासों असी मत्था टेकन जाने तुहाडे चो कोई ना कोई पटना साहिब जरूर गया होएगा जिस रस्तियों असी मत्था टेकन जाने हैं इस दे सज्जे पासे दरवाजा है एक पासे खब्बा दरवाजा जिस तो मत्था टेकने हैं तख्त श्री हरिमंदर साहिब एक गुरुद्वारे का दरवाजा है जिथे असी जोड़े रखने हैं पटना साहिब उस दे सज्जे पासे मंदिर का दरवाजा है ये आप ही तुसी जान लो कितना न्यारापन होएगा साढ़े धर्म का हूं भी असा कभी नहीं कहा सवेर वेले मस्जिद विचों अजान की आवाज क्यों आती है साढ़े मुंह चो कभी नहीं निकलिया कि मंदिर भी सिरे टली क्यों बजती है यही कारण होगा कि कलगी धर महाराज के मुख विचों ये वाक जिसले निकलिया पूजा और निवाज उ ना पूजा च फर्क है ना नमाज च फर्क है ये सिख का न्यारापन संसार तो वखरा है अलहदा है यही गल सी जेड़ी साढ़े इतिहासकार ने या अज दे इंसान ने जिन्होंने पढ़िया उन्होंने कहना पाया कि इसके न्यारेपन देखो इस ना समझिया जे कोई वख बात हो के संसार तो विचर रहा है इसका न्यारापन ये है खालसे का सिख का कि इसने सब तो पहला सानू निर्बाहर कर दिता पट कहते ने कि हे गुरु पिता या हे गुरु पातशाह तुसा लोगों को निर्बाहर कर दिता या जिवें भाई गुरुदास जी ने फरमाया है कि गुरमुख पार अथर बन तारा इस गुरु ने आके बाणी राही जो मेरे सिर ते भार पे हुए सन ना वो उतार के रख दिते मैं हल्का फुल बना दिता ये है न्यारा मेरे तो कोई भार नहीं है क्योंकि सिद्धांतक तौर ते गुरु अर्जन महाराज का हुक्म हो गया बो शास्त्र बो स्मृति पेखे सर्ब ठंडोर जे गुरु अर्जन पातशाह वर्गे पातशाह ने सारिया शास्त्रा ते वेदा नूं पेख लिया है देख लिया है कहते ने मैं सारे देख ले हन पेखे सर्ब ठंडोर पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल ए कोई भी इन्हां विचों उथे नहीं पुज लिया जिथे हरि नूं पुजन का कोई राह है सारे कुंतर हन सारे कोई अठकेलियां दिमाग दियां या ऊंचाइया नूं छूण की कोशिश कर रहे हैं इसी न्यारापन जो पिता ने सानू दिता ताकि असी शब्द दे राही उस प्रभु नूं पा सकीए अते इस न्यारेपन अंदर सब तो ज्यादा जरूरत है जो सानू उन्होंने समझाई कि सानू पता लगता रहे कि साढ़े न्यारेपन उत्ते किस किस थां उत्ते कोई चोट मारदा है मैकालूफ ने जिस वेले छे हिस्से लिखे ना सिख इतिहास दे ते पछम दे लोकां नूं कहन लगा हे सारे संसार दे लोको मैं तुहाडे लई एक ऐसा धर्म लैके आया हाँ जिस विच ना बुध पूजा है, जिस विच ना पाखंड है, जिस विच ना व्रत है, जिस विच ना कोई संजम है, जिस विच ना जात है, जिस विच ना पात है, जिस विच विधवा औरत नूं साड़ की सती नहीं किया जाता, जिस विच औरत नूं गुलाम बना के बंदी नहीं किया जाता, जिस धर्म के अंदर सवाए शुक्र तो, सबर तो, संतोख तो, न्याय तो, दया तो सवा कुछ भी नहीं है। अते सब तो वड्डी गल, इस विच ना कोई नशा है, अते ना इस विच कोई तमाकू वाली इल्लत है, ना इस नूं कदी ख्याल आया है कि मैं तीर्थ तो कुछ लै सकना हाँ, ये शब्द तो सब कुछ लिया। इस वास्ते पछम दे लोको मैं तुहानूं दस रहा हाँ कि ये धर्म उचेरा धर्म है, अते उसका शब्द है हाई रिलीजन है। ये कोई छोटा धर्म नहीं है, इतना हाई रिलीजन है। इसकी ऊंचाई नूं पाउण लई हर सिख जिस वेले अमृतधारी हो जाता है, उसका ध्यान हमेशा ये रहता है कि जो मेरे गुरु ने मेरे लिए आदर्श बनाया है उसनों मैं छोड़ का यतन करा। इस करके न्यारा है कि इस दे हर सिख विचों किसी ना किसी वेले तुसी गुरु का अक्स देख सकते हो। अते एक होर योगी जो साड़ी सदी का योगी है, जिसनों सारी दुनिया जानती है, अरबिंदो घोष, अते जिस दे पांडीचरी जिस दे जीवन विच भी बाद विच भी एक नगर बन गया अरोविल, के अरविंदु दे नाम उते एक नगर वसिया है, जिथे लोग कहंदे ने योग सीखने लई जांदे ने, या संसार दे लोग कहंदे ने कि इस सदी दा जिंदा योगी कोई होया है ते अरविंदु घोष है। उसने एक किताब लिखी है इटरनल इंडिया, वो हिंदुस्तान जो कभी मरेगा नहीं, उस विचों ने एक चैप्टर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अते एक चैप्टर सिखी बारे लिखा है। मैं इसलिए सुना रहे हैं कि सिर उच्चा साड़ा कितना है संसार उते, भावें कोई लिखारी निकालम वर्गा है, भावें कोई इतिहासकार टाइम भी वर्गा है, भावें कोई योगी अरबिंदु वर्गा है, भावें कोई विज्ञानी अज दी दुनिया अंदर कोई साइंसदान वर्गा है, वो भी ये गल जोर नाल कहेगा कि सिख धर्म का न्यारापन संसार तो वखरा है। उसमें किसी ने पूछ बैठा छेड़ से बड़ा निशानों में, साढ़े च की ऐसे इंसान नहीं हैं जो मूर्खपुणी च आख जाते ने गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है। मेरा ख्याल है तुहाड़े कन्नां च भी कई बार कोई आवाज पाँदा होगा, पाते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है। तो जिस वेले कोई अनजाण पुणे च ये आखे गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है, इसके अर्थ से हुए ना कि चार जो वेद हैं वो भी पढ़ने बड़े जरूरी हैं, तो हुक्म तो सानू यह है कि मैं सारे पढ़ के देख रहे हैं कुछ नहीं। जिस वेले मुख विचों ख्याल पैदा होएगा ये वेद है, उसी वेले इंसान वेदां वल जाना शुरू कर देवेगा। ये गल योगी को किसी ने पूछी, अरविंदू को पूछी कि धर्म तो सारा उन्हें को लिया गुरु नानक साहब ने, अच्छे साढ़े चू कई कह देंगे जी तर्जमा होया है जी लिखत च आ गया जी, उन्होंने लोगों को समझ नहीं सी आती, इस करके इस बोली अंदर कह रहे हैं। वो क्योंकि योगी सी त्रै काल की जानता सी, तो इटरनल इंडिया पुस्तक लिखता है ये गल सारे अच्छी तरह जान लवो कि सिख धर्म एस्टॉनिशिंगली ओरिजिनल एंड नॉवल है। हैरान कुन की हद तक ये जो धर्म है ना, ये मूलक है अते न्यारा है। ये कितना मूलक ते न्यारा है, कहंदा इस दी एक गल ही देखो, इसने इंसान नू वाहेगुरु दे दीदार कराने ने अते कितना आसान तरीका दसिया है। ए हुण पुछणा तुहानू जिहड़े आके कहंदे ने तुहानू मैं तली ते वाहेगुरु दिखा देना हाँ, तैनू मस्तक ते दिखा देना, ये त्रै काल दर्शी जो योगी है कहंदे इसलिए एस्टॉनिशिंगली ओरिजिनल ते नावल है, ये वाहेगुरु नू प्रतख दर्शन करवांदा है, जो बड़े आसान तरीके नाल करवांदा है। अते जो उसने लिखे है उन्हें तो इन बिन सुनाना ताकि पता लगे कि न्यारा धर्म साडा क्यों है। आखदे एक आसान तरीका गुरु नानक दे गए कि गुरु प्रसाद का बीज पा दियो, गुरु प्रसाद का बीज पा दियो, सुनना शुरू कर दियो, एक तना बन जाएगा, एक मुड़ बन जाएगा। बीज गुरु प्रसाद का पाद्या सुनना शुरू कर दिया, एक तना बनना शुरू हो जाएगा, मुड़ बनना शुरू हो जाएगा। जे शब्द को सुन के मनना शुरू कर दियो, विचों शाख निकल आएगी, इहदे विचों एक टहनी निकल आएगी। तो कहिंदा जे जरा भी ध्यान नाल शब्द को सुन के एकाग्रचित हो जाओ, इस दे शाख में एक फुल लग जाएगा, खुशबू आ जाएगी। इस तरह लगेगा जिवें तुहाडे सारे शरीर अंदर खुशबू पैदा हो गई है। अते जरा कु लमेरे ध्यान तो बाद वाहिगुरु प्रतख दिखाई देने लग पवेगा। इस तो कहिंदा हैरान कुन बात होर की हो सकती है कि सिर्फ गुरु प्रसाद का बीज पान नाल इंसान प्रतख दर्शन हो जाए। इस दी व्याख्या जितनी मर्जी करिए सुनहरेपन की, आप गुरु पिता ने सानू समझाया भी कि इतना निहरापन है इस दा, शरीर रूपी खेत नू पहला सवाल, इस विच शब्द दे अखरां दे बूटे ला दे। कितना आसान तरीका है, पहला शरीर नू सवाल, शरीर नू सोहना कर, शरीर नू सोहना करन तो बाद इस विच शब्दां दे अखर दे बूटे ला दे। देखते देखते एक बाग बन जाएगा। पिता कहंदे ने कि देखते देखते एक बाग बन जाएगा, जिसले बाग बन जाए खिड़ जाए इसनू पानी देंदे रही, अते पानी दे प्यार दा, जिस वेले प्रेम दा पानी देगा, देखेगा कि एक फल अपने आप इसनू लग गया है, वो नाम दा है। हुण मैं तुक पढ़ लगा, इस तो आसान रस्ता होर है कोई नहीं। पिता फरमांदे ने अखर बिरख शब्द दे बूटे नू लाना शुरू कर दियो। एक ना आसान तरीका है कि जिस तरह वो बूटा लांदे ना गोडी करदा है, अखर बिरख बाग पुणी चोखी खूबसूरत जमीन सवार, अते सिंचत भाव करई सबना फल लागे एको नाम। हर एक नूं नाम दा फल लग जाएगा। ये नहीं कि किसी साधु नूं लगेगा तो ग्रस्थी नूं नहीं लगेगा, यह नहीं कि उदासी नूं लगेगा तो कर्म किरत करने वाले नूं नहीं लगेगा, यह नहीं कि किसी प्रचारक नूं लग जाएगा तो उस दुकानदार नूं नहीं लगेगा। यह है इस दा न्यारापन कि वो आखदा है कि इस तो आसान रस्ता और है कोई नहीं कि अखरां दे जो गुरु पिता ने दिते हुए हैं धरती में सवार के इहदे विच बूटे लाने शुरू कर दे, ऐसा बाग बनेगा। सिर्फ प्रेम की इस चाशनी प्रेम का जल देना बड़ा जरूरी है। इस करके इस धर्म संसार ने हूँ भी अगे भी इसके न्यारेपन इतों ये जान लवो कि किसी को कुछ लेंदा नहीं है। यह भी गल मैं समझना एक बहुत वड्डे सियाने बंदे ने, असी तो घट कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर दुनिया हम बड़ी कोशिश कर रही है। जिमें एक कोशिश हुई कि दुनिया दिन 100 मावं लभो, किड़िया 100 मावं हैं जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर एक कोई ऐसा इनकलाब लै आंदा है कि उन्होंने बेटे पैदा हुए तो अज तक वो बेटे याद नहीं, मावं भुल गई ने, वह कि मावं ने। जिमें साडे इतिहास में यह किताब हम छपी है 100 ग्रेट मदरस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया दिन 100 मावं, असी तो एक आसान तरीका लभ्या ने, दुनिया दिन सिर्फ 2.5 मावं ने। असी गल मुका दी पंजाबियों ने कि सिर्फ दुनिया से 2.5 मावं हुई ने, पहली मां बाबा फरीद जी, दूजी मां ध्रुव जी, तीजी मां कहते हैं अद्धी सी यह है गोपी चंद जी। ख्याल है संसार का अद्धी माए पहला लाया सू, जिमें मावं कर दिया ने, पहला पहला तो कह दिया जप जी याद कर, पाठ कर, अमृत वेले उठा कर, तो जिस वेले जरा को समझ आने लगती है ना उस वेले कहती है किरत करया कर, बाहर जाया कर, की तो करना पे है, देख तेरा पढ़ा कितने अगे बढ़ गया। गोपी चंद जिसले जरा कुछ समझ उस आ गई तो मां फिर रोन लग पे, कहते अद्धी मां है, फरीद की मां पूरी है, क्योंकि जब तक फरीद नू अल्लाह का पूरा दीदार नहीं होया, फरीद की मां ने छड़िया नहीं है। कहने का भाव है इसे तरह एक पुस्तक बड़ी मशहूर पुस्तक है, जब तो दुनिया बनी है अज तक 1984 तक उस बंदे ने कोशिश की थी कि दुनिया चो 100 बंदे लभो जिन्हां दी सारी तालीम ओरिजिनल है, नावल है, हैरान कुन है। उन्हें भी किताब ही लिखी 100 ओरिजिनल थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। लिखने वाला है ग्रीन। मैं अगली बेनती वरिंदर सिंह जी ने की थी, प्रबंधकों की थी, जिड़ी संसार दियां मुढ़िया पुस्तकों में साढ़े धर्म बारे इतना मेहनत बाद लिखा है, इसमें सुनाना जरूरी है ताकि अज का बच्चा किसी गलत किताब को पढ़ के होर पासे न जाना शुरू हो जाए। उस उन्होंने हिंदुस्तान विचों 4 बंदे चुने, ये हैं ओरिजिनल। बाकियों को ना लैन की लोड़ नहीं है, किताब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा वो 4 केड़े हैं जिन्हों की ओरिजिनल थिंकिंग है। एक विचोना साहिब गुरु नानक देव जी महाराज लिखिया कि एक गुरु नानक ऐसा है जिसने किसी को कुछ लिया नहीं है, सीधी वाहेगुरु को दात लैके इसने अपने पंथ में सिख में दी। तो ओरिजिनल लिखता ओरिजिनल है कि गुरु नानक साहब को बाकी तो बड़ा कुछ समझाया उसने अपने 4 सफ़ियों के लेख अंदर कि यह ओरिजिनैलिटी है गुरु नानक साहब की। पर कहिंदा एक गुरु नानक की सब तो वड्डी मूलक देन है, ओरिजिनल देन है, वो ये है गुरु नानक ने वेचिया कुछ नहीं, दिता ही दिता है। गुरु नानक ने वेचिया कुछ नहीं है। हुण तुसीं देख लैना दुनिया के बहुते धर्म, बहुते इंसान अज साडे सामने चीज़ नूं वेचणगे जरूर, अते जे उसनों कुछ भी प्राप्त हो जाए। गुरु नानक ने दुकान नहीं पाई, उसने वंडिया ही वंडिया है, दिता ही दिता है। यह गल जिस वेले उन्होंने लोगों ने पढ़ी, फिर दूजी गल उसी योगी ने लिखी उस पुस्तक अंदर, आखदा है यह धर्म फिर इतना ओरिजिनल क्यों हो गया। वो बारे उसने अंग्रेजी का शब्द वरत्या, तर्जमा करने गलती पुल हो सकती है। कहिंदा है आउटब्रेक ऑफ फ्रैश एक्टिविटी। इंज समझो जिवें कोई ज्वालामुखी फटदा है ना, उहदे विचों सजरी दी ताज़ी चीज़ निकल आउंदी है। सिख धर्म इस तरह है जिवें गुरु नानक देव जी दे महाराज दे आमन बाद जिवें धरती अंदर कोई ज्वालामुखी फट गई होवे, अते उस दे बाद जो कुछ खिल रहा है सारा नवीन है, नावल है, ओरिजिनल है। इस विच इस तो वड्डी ओरिजिनैलिटी यह है सिख धर्म की कि किसी वेले भी साढ़े उत्ते ना कर्म का पहाड़, ना संजम का पहाड़, ना धर्म का पहाड़ पाया। इहो गल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत छकाण वेले कही सी, जिसले अमृत आपने प्रदान कर दिता, आपने हथ जोड़ के दात ले ली। उस वेले एक तकरीर की है, वो तकरीर एक इतिहासकार ने फारसी अखर अंदर इन बिन लिखी है, पुचाई औरंगजेब नू है कि यह होया है आनंदपुर साहिब दे विच जिस वेले अमृत साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने छका दिता। एक उन सब नू ये भी याद रहे कि जड़ा हुक्मनामा महाराज ने भेजिया सी ना सारे हिंदुस्तान या देसां प्रदेशां नू, उस वेले हुक्मनामे दे शब्द ये सन, जे तुहाडे घर 2 बेटे हैं एक आनंदपुर भेज दिओ, जे तुहाडे घर 4 बेटे हैं 2 भेज दिओ। यह कारण सी कि आनंदपुर विसाखी वाले दिहाड़े 80,000 की हाजिरी हो गई सी, उहदे विचों 20,000 ने अमृत छकिया सी। जिस वेले अमृत की दात दे चुके ने ते क्या ने ऐसा धर्म जिहड़ा तुसां हुण अपना लिया खालसा बने हुए आप बनिया, इस वी 4 चीज़ां नूं मैं सिखां अंदर नाश कर दिता है। यह है साढ़े धर्म की सब तो वड्डी ओरिजिनैलिटी या इसका न्यारापन, जिसनों कोई पुरोध, जिसनों कोई विपर या जिसनों कोई अज संसार से जान नहीं सकिया। असं अपने न्यारेपन से आप ही चोट मार रहे हैं, आप ही कई बारी उन्होंने ऐसा रीत जड़िया पिता ने आप खत्म कीतियां उन्होंने असी संसार से प्रचारण लग पाने। उस वेले महाराज ने कहा मैं 4 चीज़ा नाश कर दतियां थानू खालसा बना के। सब तो पहला धर्म नाश। हुण कोई इंसान यह नहीं आखेगा कि फलां धर्म के अंदर सब तो उत्तम है, फलां धर्म के अंदर पई हुई जड़ी चीज है उस तो बगैर किसी का गुजारा नहीं होना। अज मैं सारियां विच यह आख लिया सारे वाहिगुरु के बेटे हैं, वाहिगुरु की जाए हैं। दूसरे मैं कर्म नाश कर दिता। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਠਾਠ, ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਚਲੀਏ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਘੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਚਲੀਏ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਸ਼ਕ ਮੁਕਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਚਾਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਵਾਲਿਊਮ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਐਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾਪਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਪਰੰਕਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਅੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਰਮ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਭਰਮ ਦੀ ਨਾ ਭੈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਗਤੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿਸੇ, ਇਹ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੁੱਧ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਪ ਹੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛ ਪੈਰ ਰਾਤ ਪਿੱਛਲ ਜੋ ਰਹੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕਾਂਤ ਮੈਂ ਬਹੇ, ਤੇ ਕਰੀ ਕੀ ਇਕਾਂਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਲਈ ਧਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਰੈਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਫਾੜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਛਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਅਥਰ ਬਨਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਜੰਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟ ਬ੍ਰਸਟ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਟੀਕਾ ਦਰਪਣ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 38 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਨਵੀਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਕਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ अपने सिंहासन से बिठा दिता। हूँ सिंहासन से बिठाने वेले जो उन्होंने बचन कहे ने यही है गुरु रामदास, उस वेले मुख चो निकलिया ने जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साहबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम था। जरा को बख्शिश मिले सब तो पहला इंसान गुरुद्वारा पूजा है, गुरु बोलता है उसको ख्याल पैदा हो जाता है खुद कितों आया छतर तहत पे बैठे ने चौर होने लगी है तो कहते ने जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा। लाहौर याद आ गया, चूने लड़ी याद आ गई कि जिस वेले मैं चूने लड़ी चो निकलिया हाँ मैंने बरादरी देता नहीं, मेरे को खाने भी कुछ नहीं, छोटा मेरा भरा है, निक्की मेरी भैन है, कोई मेरा साथी नहीं है, सिर्फ नानी हाथ उंगली फड़ के मैंने उतों ले जा रही है, ते अज तख्त उते बैठ के पातशाह मुंह याद आ रहा है जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। इसलिए का आसान तरीका यही है कि जिसमें कुछ प्राप्त हो जब मुझे निकलता जरूर कुछ है। सूर्य प्रकाश ने जिस वेले सारे वॉल्यूम लिख ले जिन्हों की तादाद 14 है, 14 पुस्तक लिखन के बाद आखिर ते फिर जी लाइन लिखी ने यही है मैं समझना सिखदा न्यारापन। आप कहते ने द्योस कहां, द्योस कहां सूरज बिना मन एक विचारा, एक गल मैं अपने मन अंदर विचार के लिख रहा हाँ या पूरी अकल नाल लिख रहा हाँ, सूरज तो बगैर रोशनी नहीं हो सकती। द्योस कहां सूरज बिना मन एक विचारा, ते तरबो कहां सिखी बिना भव सागर पारा, कोई सागर तर नहीं सकता बगैर सिखी तो। यह मैं गुरु पातशाह के जीवन विचों जो मैं मिले लिख रहा हाँ, बस यही न्यारापन है किसी थान से होर सागर तरन का रस्ता नहीं है, आसान जो सानू पिता दे की गए यह न्यारापन कायम रवे। जब लग रही खालसा न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, जब गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रति, मैं वही नहीं दियागा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
Yeah.